ему сын Тинья. Наму Арихантам. Наму Сиддхартам. Наму Арьянам. Наму Увачхаяянам. Наму Лоуи Саббасахунам. Ису Панчинаму Яру Саввапам Пана Сану Мангаланам Чисаввесин Падамам Хавай Мангалам Читтари Мангалам Арханд Мангалам Сиддхамангалам Саху Мангалам Кевалипаннатту Дхаммо Мангалам Чаттари Логуттама Арханд Логуттама Сиддхало Логуттама Саху Логуттама Кевалипаннатту Дхаммо Логуттама Чаттари Саранам Павваджами Арханд Саранам Павваджами Сиддха Саранам Павваджами Саху Саранам Павваджами Кевалипаннатту Дхаммо Саранам Павваджами. Парам Пуджи Девадидев Бхагаван Махавир Свами Ки Джай. Ахинса Парамо Дхарма Ки Джай. Ачарья Шри Гуру Видьясагар Джи Махарадж Ки Джай. Йог Ки Бат. संसार में तीन श्रेणी के जीव, भोगी, रोगी और योगी, जिनके जीवन में भोगों का संतुलन है वो रोगों से अपने को बचा सकते हैं और जिन्होंने संसार शरीर और भोगों की विषमता को पहचान लिया और संसार से पार होने के लिए जिन्होंने अपनी कमर कस ली वे योग को अंगीकार करते हैं। संसार की तो ये दशा है, जब तक अनुकूलता है तब तक इसको सब अच्छा समझते हैं और जब प्रतिकूलता आती है तब जो विषय भोगों में रचे पचे लोग हैं वो भी कहते हैं कि संसार असार है। लेकिन जब फिर संकट टल जाता है तो पुनः वही रुचि दिखाई पड़ती है। वास्तव में वैराग्य ऐसी वस्तु नहीं है कि मोम की तरह पिघल जाए, वापस भोगों में रुचि उत्पन्न हो जाए। आप लोगों में से अधिकांश लोगों की यह धारणा होगी कि योग का मार्ग बड़ा कठिन है और धीरे धीरे अभ्यास करते करते ही इस मार्ग में सफलता हासिल की जा सकती है, पर ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग इस मार्ग पर आ चुके हैं जिन्होंने जीवन में कभी प्रतिकूलता को देखा भी नहीं, चखना तो दूर की बात। इतिहास को भी देख लो आप, वर्तमान में भी देख लो, ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। सुविधाओं में तो कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी वैराग्य हुआ, सारी संपदा को ठुकराकर त्याग मार्ग पर बढ़ चले। और त्याग भी अपनी अपनी धारणा के अनुसार अलग अलग श्रेणी में बंट जाता है। जो जिस वस्तु को अनावश्यक समझ लेता है वह फिर उसको पकड़ के नहीं रखता। आचार्य जी तो बहुत कड़क उदाहरण देते हैं इसका। किसी ने आपके हाथ में दूध का ग्लास थमा दिया, इलायची बूरा आदि कुछ चीजें उसमें डली थी, केसर वगैरह, खुशबू अच्छी थी लेकिन स्पर्श अच्छा नहीं था, बहुत गर्म थी ग्लास। तो अब उस अनिष्ट स्पर्श का कष्ट हुआ जैसे हाथ में ग्लास आई। अब वो तो चूंकि प्लेट में लेकर के आया था उसको कोई गर्माहट नहीं महसूस हो रही थी, लेकिन आपने जब अपने हाथ में लिया बहुत गर्म महसूस हुआ ग्लास। अब आचार्य जी कहते हैं कि क्या आप उससे पूछते हो कि रख दो? नहीं, गर्माहट सहन नहीं हो सकती, पूछने का समय कहां है? अपने आप हाथ उस ग्लास को छोड़ देता है। ठीक यही स्थिति वैरागी की होती है। जब अंदर से सच्चा वैराग्य उठता है तब सांसारिक विषय छोड़ने योग्य है या नहीं ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां तो बस त्याग का ही बहुमान हृदय में प्रकट हो जाता है और फिर सब सुविधाओं को ठुकरा कर वह उस मार्ग पर बढ़ जाता है। और इसके लिए एक बड़ा ही अद्भुत उदाहरण प्रथमानियों ग्रंथ में उपलब्ध है कि राजा प्रद्योत का एक पुत्र, चंड प्रद्योत उसका पूर्ण नाम था राजा का, उस चंड प्रद्योत का एक पुत्र बहुत छोटी उम्र का था और जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था, जब उसकी माँ भी रानी बनकर नहीं आई थी, तब एक बार राजा हाथी पर सवार होकर कहीं टहलने निकला, सो भटक गया। फिर कोई सज्जन पुरुष मिला, उसने राजा को अपने घर बुलाया, सेवा की, और उस व्यक्ति की जो पुत्री थी उसने पानी भोजन आदि के माध्यम से राजा की क्षुधा आदि का निवारण किया। और फिर आगे चलकर उसी कन्या के साथ राजा का विवाह हो गया। और जब बालक उस रानी के गर्भ में आया, तब उसको कुछ अच्छे प्रशस्त सपने दिखाई दिए, बैल वगैरह स्वप्न में दृष्टिगोचर हुए। और चूंकि बहुत ही सुंदर बैल सपने में देखा था, और बैल का एक नाम संस्कृत भाषा में वृषभ है, तो बच्चे का नाम भी वृषभ सेन रख दिया। बच्चा बड़ा हुआ, बहुत नाजुक था, छोटा सा, धीरे धीरे बड़ा हुआ। और एक बार किसी कारणवश राजा के अंदर वो भाव जागृत हुआ, इस संसार में कोई सार नहीं है। श्मशान में तो प्राय आप लोगों के अंदर भी ऐसा कोई भाव आ जाया करता है कभी कभी, लेकिन राजा को सच्चा वैराग्य हुआ। उसने सोचा कि अब तो दीक्षा लेना ही हितकारी है। जिनको वैराग्य का 1% भी परिचय नहीं हुआ, वो समझते हैं कि ये सब क्या कायरता है, ये सब पलायनवाद है। लेकिन पलायन अर्थात भागना उससे संभव है जिससे डर लगता हो, जहां सब कुछ इष्ट 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 रखा हुआ हो, वहां से भागने की तो कोई बात नहीं होती। जहां पुरुषार्थ में भी कोई कमी न हो, सारी संपन्नताएं हो, वहां कोई इस प्रकार की बात नहीं घटित होती। और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई गरीब हो और वो दीक्षा ले ले तो आप ऐसा निर्णय कर लो कि गरीब था क्या करता बेचारा, ले ले दीक्षा। तो इस प्रकार का निर्णय उचित निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसके भावों की क्या दशा है ये आप बाहर से सर्वथा नहीं पहचान सकते। तो राजा को जब वैराग्य हुआ और प्रजा को ज्ञात हुआ कि राजा दीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, निवेदन किया कि अभी जल्दी मत करो, किसी को राज्य सौंप करके फिर आप संन्यास ले लेना। तो राजा ने सोचा कि किसको राज्य सौंप, लड़का तो छोटा ही है, 7-8 साल का, लेकिन फिर भी हाँ इसको बैठा दूंगा और मंत्री लोग काम संभालते रहेंगे, क्योंकि जिस राज्य को आगे चलकर भी छोड़ना ही है, उसको छोड़ने में विलंब करना भी ठीक नहीं लगता। तो उसने सोच विचार करके फिर अपने पुत्र को कहा, बेटा वृषभ सेन, अब हम तुम्हें राजा बना रहे हैं और हम यहां से जाने वाले हैं, लड़का बोलता है कि कहां जाने वाले हैं पिताजी, पर मुझे राजा क्यों बना रहे, मैं तो अभी छोटा ही हूं। तो फिर बोले कि तू अभी छोटा है, क्या समझेगा, बस इतना ही समझ ले कि मैं जाने वाला हूं और फिर यहां लौट नहीं पाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, वापस नहीं आ सकूंगा, इसलिए तुम राज्य संभाल लो। अब लड़के की उत्सुकता और बढ़ जाती है, पूछते कि वापस नहीं आ सकोगे, आप पूरा स्पष्ट बताओ क्या बात है, इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं आप। तो फिर पिताजी उस बालक को कहते हैं कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, और दीक्षा के बाद तो कोई महाराज घर पर नहीं आते, इसलिए मैं घर नहीं आऊंगा, और चूंकि मैं राजा था इसलिए अपने पुत्र को राज्य देना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, मंत्री लोग सब संभाल लेंगे, तुम्हें बस सिंहासन पर बैठना है मुकुट लगा के। बालक छोटा था लेकिन फिर भी उसके मन में बहुत सारी तरंगे उठी। उसने सोचा कि ऐसा क्यों, यहां क्या परेशानी है, क्योंकि बचपन से ऐसे संस्कार है संसारी प्राणी में कि वो यही सोचता है कि कोई तकलीफ हो तो वहां से हटे, तकलीफ ना हो तो हटने की क्या जरूरत है। जैसे अभी आप लोग बाहर बैठे हैं, पिछले रविवार को तो नहीं बैठे थे, अभी तकलीफ नहीं है, उस समय तकलीफ थी तो वहां से हट गए थे। बच्चे ने भी मन में विचार किया कि ऐसी कौन सी बात है यहां राज्य में, इस संपत्ति में, पिताजी को अच्छी नहीं लग रही और पिताजी त्याग करने की बात करते हैं, और दीक्षा तो बड़ी जटिल होती है, वहां तो कोई खाने पीने का भी ठिकाना नहीं, रहने का, सोने का कोई ठिकाना नहीं रहता, ऐसा क्यों सोचते हैं पिताजी। फिर उसके मन में एक विचार आता है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने पूरी दुनिया देखी, और मैं तो छोटा सा अपने महल में खेलता रहा, मैंने देखा ही क्या है, उन्होंने कुछ ऐसी चीज देखी होगी जिससे उनको ये संसार असार नजर आया। मैं भी प्रयास करता हूं कोई ऐसी चीज देखने का, स्मृति के माध्यम से भी बहुत से दर्शन हो सकते हैं। जैसे आचार्य श्री कभी कभी अपने बचपन की कुछ घटनाएं सुना देते हैं, जो स्कूल में पाठ पढ़ाए जाते थे उनको भी आचार्य श्री अपने प्रवचन में ले लेते हैं, लेकिन जिस समय स्कूल में पढ़ते थे उस समय उस एंगल से उस पाठ को नहीं देखते होंगे, लेकिन अब क्योंकि जीवन पलट चुका है तो अब उस पाठ में उनको कुछ और दिखाई देता है। जैसे एकता का जो पाठ बच्चों को पढ़ाया जाता है, मरणासन्न व्यक्ति अपने पुत्रों से कहता है कि मेरी आयु पूर्ण हो रही है, तुम लोग एक काम करके बताओ तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। वो सारे पुत्र तैयार हो गए कि भाई आप बताइए क्या काम करना है, तो उसने लकड़ियों का एक गट्ठर दिया, बोले कि इसको तोड़ के बता दो। अब सबने कोशिश की लेकिन वो गट्ठर जो था, लकड़ियों का गट्ठर था, वो टूटता नहीं। फिर वह वृद्ध कहता है कि अच्छा इसमें से अब एक एक लकड़ी निकालकर तोड़ो, तो सबने तोड़ दी लकड़ियां। वृद्ध का इरादा कुछ और था। उसने फिर अंत में अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए कहा कि जब तक तुम लोग एक रहोगे कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा, और अकेले अकेले हो गए तो कोई भी तुमको तोड़ देगा, जैसे ये लकड़ियों का गट्ठर। तो इसको आचार्य प्रवचन में बड़े अद्भुत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो दृष्टि बदलने मात्र से ही दुनिया कुछ और नजर आने लग जाती है। उस लड़के ने भी अंतर मुहूर्त के लिए अपनी दृष्टि बदलकर दुनिया की तरफ देखा, था छोटा सा लेकिन फिर भी सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मनुष्य था। कभी कभी बच्चों के मुख से ऐसी बातें निकलती है कि बड़ों का दिमाग चकरा जाए। वो विचार करता है, वो एक नजर डालता है नगरवासियों के जीवन पर, अपने जीवन पर, पिता के जीवन पर, रानी मां के जीवन पर, सब पर दृष्टि डालता है। और चूंकि उसकी दृष्टि दर्शक की दृष्टि थी, अब वो उस प्ले में शामिल नहीं था, वो दर्शक बनकर के देख रहा था उस दृश्य को, तो उसको कई अद्भुत बातें समझ में आई। जो समुद्र के तट पर बैठकर लहरों की तरफ दृष्टि डालता है उसको अलग अलग प्रकार की लहरें दिखाई देती है, और जो पानी में तैरता रहता है उसको समझ में नहीं आता कि बड़ी लहर है या छोटी लहर है, और किस तरफ जा रही है, कहां से इस तरफ आ रही है, उसका ध्यान ही नहीं रहता, उसका तो तैरने में ही ध्यान रहता है, वो बस अपने हाथ पांव चलाता रहता है। इसी प्रकार जब तक उसके अंदर ये दृष्टि नहीं आई थी तब तक वो भी उसका खिलाड़ी था, उस खेल का, उस संसार समुद्र में गोते लगाने वाला था, और उसी में मग्न था अपनी उम्र के अनुसार। लेकिन अब देखता है कि सब लोग किसी न किसी प्रकार से संघर्ष में पड़े हुए हैं। राजा के संघर्ष तो बहुत स्थूल संघर्ष है जो बाहर से सबकी आंखों में आ जाते हैं, लेकिन सबके भीतर जो संघर्ष मचा हुआ है वो कभी कभी पास में रहने वाले भी नहीं समझ पाते। आप देखिए, अपने परिवार में कभी तनाव आ जाता है, चेहरा बदल जाता है, अब सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाता कि इनका चेहरा आज तनावग्रस्त क्यों है, तो पूछना पड़ता है कि भाई क्या हो गया, आज तबीयत खराब है क्या? फिर वो कहता है कि नहीं, कुछ ना कुछ कह करके उस बात को टालना चाहता है, या फिर अगर सुलझने लायक बात हो बहस के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, तो वो अपनी बात प्रकट भी करता है। तो अंदर की बात पास वालों को भी कभी कभी पता नहीं चल पाती। उसने देखा कि मेरे पिता ने निश्चित रूप से सारे संसार को संघर्ष में डूबा पाया, इसलिए उन्होंने मुक्ति का मार्ग चुना। वास्तव में शांति प्राप्त करने की हार्दिक अभिलाषा होना भी संसार में अत्यंत दुर्लभ है। आप अपने हृदय से पूछकर देखो कि सचमुच क्या मैं शांति चाहता हूं या सिर्फ इंद्रिय सुख चाहता हूं। वो तो इंद्रिय सुखों में सफलता नहीं मिलती इसलिए फिर शांति का नाम लेने लग जाते हैं कि शांति मिले, शांति मिले। वास्तव में देखा जाए तो इंद्रिय सुखों का आकर्षण इतना प्रबल है कि कभी कभी तो उनको छोड़ने के बाद भी मन विचलित रहता है। और ऐसा माहौल कभी कभी बन जाता है कि जब परिवार के 5 लोग उपवास कर रहे हैं, फिर अपन भी कर लो या फिर हमसे छोटे लोग रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं, हम भी कर ले, इज्जत का सवाल है। तो ऐसे परिस्थितिवश त्याग करने वाले लोग कभी कभी उस त्याग को निभाते समय डगमगाने लगते हैं। वैसे तो शास्त्रों में जो अनुभवी तपस्वी आचार्य हुए, उन्होंने तो इतना कह दिया कि छोड़ दो, उसको याद भी मत करो, क्योंकि यही उपचार है तुम्हारे मन का। तुम्हारा चंचल मन इतना शैतान है कि तुम दुनिया की सब अच्छी अच्छी चीजें अपना लो तो भी मन कभी भरने नहीं वाला। मन हमेशा और मांगेगा, और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए। बचपन से आज तक आप स्वयं विचार करो, आप में से कुछ लोग नमकीन पसंद करते थे, कुछ लोग मीठा पसंद करते रहे, कितने बोरे नमक खत्म हो चुके होंगे अभी तक। वो हंसकर डालने की बात नहीं है, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। कितना नमक आप खा चुके, और मीठा वाले कितना मीठा खा चुके। शायद दुकान में भी जितना न समा सके उतना लोग मीठा पसंद करने वाले लोग खा लेते हैं। और धूम्रपान वाले अपना हिसाब लगा लो, महीने में कितना खर्चा आता है, साल में कितना आता है, और जितने साल से पी रहे हो उतने साल में कितना आता है। हजारों रुपयों का खर्चा हो चुका होगा। तंबाकू वाले भी क्यों बाकी रहो, वो भी देख लो भी अपना हिसाब किताब, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक ये हिसाब किताब आप कर लो, वरना फिर क्या करोगे। तो इतना सब करने के बाद भी अपने मन से पूछो कि हे मन, क्या तुझे तृप्ति हुई। मन फिर कहेगा कि थोड़ा और ले आओ, बाद में बात करना तृप्ति। माना इतना कुटिल मन है अपना, और फिर भी ये धर्म चर्चा या फिर ये जीवन की वार्ता यहां अपन सब सुन रहे हैं, कर रहे हैं। दार्शनिकों ने, विचारकों ने एक बहुत सुंदर पंक्ति कही संस्कृत भाषा में, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्यों के बंधन और मनुष्यों के मोक्ष का कारण केवल एक, उसका मन है। और मन को वश करने का उपाय है योग। और योग तो निर्वाण तक पहुंचाने वाली पद्धति का नाम है। योग का एक अर्थ होता है उपाय। तो उस बालक ने जब देखा संसार की स्थिति को, वो समझ गया कि सारे के सारे लोग संघर्ष में पड़े हुए हैं और पिता मुझे राज्य दे देंगे, मैं भी उसी संघर्ष में पड़ा रहूंगा। लोग कहते भर हैं कि दूसरों का भला करो, लेकिन जिसने खुद अपना भला नहीं किया वो दूसरों का क्या भला करेगा। खुद दलदल में पड़ा है और दूसरे को निकालेगा क्या दलदल से बाहर? कैसे संभव है? कैंसर के ऊपर भाषण देने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन भाषण देने के बाद आप देख लेना तो कहां जा रहे हैं। वो भी उसके शिकार है। दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत से लोग हैं, लेकिन इसीलिए तो उपदेश निष्फल हो जाते हैं और बहुत से लोग तो पसंद भी नहीं करते सुनना। क्या सुनना? अगर इतना ज्ञान है तो सही ज्ञान जो होता है वो जीवन में झलकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि सही ज्ञान हो और वो जीवन में न झलके। तो यह भी वर्तमान में धर्म के धर्म के प्रति अरुचि का एक कारण है कि जितने लोग धर्मात्मा दिखाई देते हैं वो 24 घंटे धर्मात्मा नहीं रहते। और ये धारणा भी है लोगों की कि मंदिर में तो धर्मात्मा और बाहर में कर्मात्मा। कर्म में आप जानते हैं कौन से कर्म होते हैं। ये ज्ञानावरण आदि कर्मों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बाकी दुनियादारी के जो कर्म होते हैं वो। वास्तव में धर्म मंदिर तक सीमित नहीं है। मंदिर तो एक आयतन मात्र है जहां आदर्श की छवि है, उनका दर्शन करके उनका स्मरण हो आता है और अपने को एक प्रेरणा मात्र प्राप्त होती है प्रशस्त जीवन की। कोई कह सकता है कि भाई उस छवि को देखने से क्या मतलब, वो तो पाषाण की या धातु की निर्मित, उसमें क्या धरा। लेकिन यहां भी उस दृष्टि की बात है। जो कह रहा है कि पाषाण धातु की छवि है, उसके लिए तो सचमुच पाषाण और धातु की ही छवि है, लेकिन जिसकी दृष्टि में फर्क पड़ चुका है वह केवल उस छवि की तरफ नहीं देखता। छवि जिसकी है वहां तक उसकी दृष्टि पहुंच जाती है। जैसे कोई पुराना फोटो एल्बम आपके यहां रखा हो और कई वर्षों बाद आप उसको खोल कर देखें, देखना, उदाहरण बहुत सरल है, समझ में आने वाला है। बहुत पुराना कोई फोटो एल्बम रखा हो, आप तीसरी में जब पढ़ते थे तब की कोई फोटो है आपकी, उसको देखकर क्या आप कागज समझते हैं? वो है क्या? कागज नहीं तो और क्या है? लेकिन फिर भी उसको देखकर आप क्या समझते हैं? दृष्टि की बात है ना। अब आप समझ रहे हैं ना बात? देखो, भिन्न भिन्न दृष्टियों से एक ही वस्तु को देखा जाए तो उसके परिणाम अलग अलग आते हैं। रेलवे स्टेशन पर लगी हुई घड़ी को देखकर एक व्यक्ति सोचता है लेट हो गए, दूसरा सोचता है टाइम पर पहुंच गए, तीसरा सोचता है बिफोर टाइम आ गए, और चौथा कुछ और सोचता है, पांचवा कुछ और सोचता है, और यदि घड़ी अच्छे दर्जे की रही तो चोर उस घड़ी को देखकर कुछ और सोचता है। तो इसी प्रकार आप अपने तीसरी कक्षा के फोटो को देखकर जो विचार करते हैं वो विचार आपके पड़ोसी नहीं कर सकते। उसी प्रकार भगवान की छवि को देखकर भक्त के हृदय में जो विचार आते हैं वो दूसरे व्यक्ति के हृदय में नहीं आ सकते। उसको तो पाषाण और धातु के सिवाय क्या दिख सकता है? पर देखिए, उस छवि के दर्शन का भी कितना जबरदस्त असर होता है। ऐसा नहीं कि उससे क्या होता जाता है, पर वो दृष्टि चाहिए देखने वाले के अंदर, वरना कोई ऊपर से धर्मात्मा बनकर मंदिर आ जाए वो तो बाहर निकलकर बहुत ही नीचे गिर सकता है। नीचे गिरने का मतलब है आचरण में। पर जो भक्त बनकर के आया हुआ है वह धर्म की मर्यादा के बाहर कदम नहीं रख सकता। दृश्यों का कितना असर पड़ता है। आज रविवार है और टीवी देखने की जिनको आदत है वो देखते भी हैं। फिल्म्स देखते समय कितनी सारी तरंगे अपने अंदर उठती है, माने एक तूफान आ जाता है। इसको मामूली बात मत समझना। जो उस पर्दे पर दिखाया जा रहा है क्या वह सजीव है? क्या वह साक्षात अमिताभ बच्चन है? नहीं है, फिर भी कैसा हो रहा है भाव? उसको देखकर इतनी तरंगे कैसे उठ रही है? क्योंकि वह तदाकार है, उसके जैसे ही आकार को लिए हुए चित्रों के माध्यम से वह सारी प्रक्रिया चल रही है। और कदाचित किसी फिल्म में कोई बच्चा पालने में झूल रहा है, खिड़की खुली हुई है, बाहर बगीचा है, वृक्ष भी हैं, लताएं हैं, सुंदर फूल खिले हुए हैं, देखते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन देखिए भावों में कैसा फर्क पड़ता है उन दृश्यों के निमित्त से। अब अकस्मात एक सांप उन लताओं से लटकता हुआ खिड़की की शलाका पर आ जाता है और कमरे के अंदर आ जाता है। अब क्या दर्शक उबासी ले सकता है या फिर ऐसे टिक कर बैठ सकता है? भले उसकी आदत हो टिक कर बैठ कर देखने की, लेकिन फिर भी जब वो सांप चलता हुआ उस बच्चे की तरफ आता है तो टिकने वाले लोग भी ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। ऐसा क्यों? कई लोग तो कुर्सी को ऐसे जोर से पकड़ लेते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। जिस प्रकार उस दृश्य को देखकर मन प्रभावित होता है, उसी प्रकार वीतराग प्रभु की शांत छवि को देखकर भी निश्चित रूप से अपने भावों में पवित्रता आती है और अपना मन आलंबन लेने का आदि है। इसलिए आलंबन के माध्यम से मन को स्थिर बनाने का प्रयास किया जाता है प्रारंभिक अवस्था में, और जब अभ्यास परिपक्व हो जाता है तब योगी आचार्य शांति सागर महाराज जैसे दिल्ली के उस चौराहे में बैठ करके ध्यान लगा सकते हैं। जब आचार्य महाराज दिल्ली गए थे तब एक विषम परिस्थिति सामने आ गई थी। उस समय अंग्रेजों का शासन था और कानून पुराना चल रहा था मुगल शासन का, नंगा व्यक्ति निकल नहीं सकता खुली सड़क से। तो वहां की जनता इस बात को जानती थी, महाराज नहीं जानते थे। महाराज श्री तो यही जानते थे कि भाई दिगंबर साधु है ना, दिगंबर। तो जब सवेरे वो जाते थे निस्तार के लिए, निहार के लिए, तो 12-13 लोग उनके साथ चलते थे और उनके चारों तरफ घेर करके चलते थे, और ऐसे चलते थे कि दूर से देखने वाले सोचे कि कोई चले जा रही कोई टोली, महाराज श्री जा रहे हैं ये पता ही नहीं चलता था। एक बार किसी ने महाराज श्री से बता दिया कि महाराज ये लोग सब आपके पीछे आपके आसपास इसलिए चलते हैं कि यहां ऐसा कानून है। महाराज श्री ने उस दिन फिर आदेश दिया कि कल हम कमंडल लेकर जब जाएंगे सिर्फ एक व्यक्ति साथ में रहेगा, बाकी किसी को नहीं चलना। सब चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा, और महाराज श्री की भी आज्ञा टालने वाली आज्ञा नहीं, तो कह दिया है ना, कह दिया खत्म। और वैसे ही हुआ, जब निकले महाराज तो एक चौराहा पड़ता है, नाम तो हमें ख्याल नहीं है, लेकिन उस चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस है उसने विसल बजा करके कहा कि ए रुक जाओ, और उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, नग्न व्यक्ति नहीं जा सकता खुली सड़क से, रुक जाओ यहां नहीं जा सकते, कहां जाना है तुम्हें। फिर महाराज यहां जाते थे ऐसे इशारा कर दिया, महाराज बोलते कि नहीं वहां नहीं जा सकते। महाराज ने सोचा कि और किसी दिशा में चले जाए, वहां कहीं स्थान मिल जाए, तो ऐसे महाराज ने पूछा दूसरी दिशा के बारे में, वहां भी नहीं जा सकते, यहां भी नहीं जा सकते, वापस भी नहीं जा सकते। तो फिर महाराज जी वहीं पर बैठ गए ध्यान में, और तहलका मच गया दिल्ली में। जितनी गाड़ियां निकले वो सब रुक जाए वहां, कि ये कौन बाबा जी बैठे हुए हैं यहां पर चौराहे पे ध्यान लगा के। और उनकी मुद्रा भी ऐसी अद्भुत थी कि मनुष्य तो क्या उनके शरीर पर 5 बार बड़े भयानक सांप भी क्रीड़ा कर चुके, उनके कंठ से लिपट कर भी सांप बड़ी देर तक के रह चुके और फिर शांति से प्रस्थान कर गए। सबसे पहले तो प्रसिद्धि वहीं से हुई थी शांति सागर आचार्य महाराज की, ये सारा विश्व उस समय वैज्ञानिक चमत्कार और फिर आधुनिकता में डूबा हुआ था। और तब अचानक दक्षिण भारत के एक अखबार में खबर छपी कि आज भी एक कोई फकीर, एक कोई नग्न साधु गुफा में तपस्या करता है और उसके शरीर पर 2-2.5-3 घंटे तक अभी कुछ दिन पूर्व सांप ने क्रीड़ा की और उनको खरोंच तक नहीं पहुंचाकर, कोई बाधा ना पहुंचाकर चुपचाप चला गया। अब भीड़ लग गई उनके दर्शन के लिए, पता चला कि वो तो दिगंबर जैन साधु है। लेकिन दिगंबर जैन साधु का मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी संप्रदाय से बंधे हो, ठीक है जो श्रावक विधिगत आहार देते हैं उनके यहां आहार ले लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार उन्हीं के जीवन की एक घटना घटित हुई थी जो उनसे काफी निकट थे, पंडित सुमेर चंद दिवाकर, उनकी महाराज श्री ने उपेक्षा कर दी और फिर कुछ कठोर भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया महाराज श्री, वो बड़े दुखी हो गए। तब फिर उनको एक दूसरे सहधर्मी विद्वान ने समझाया कि आप इतना अफसोस क्यों करते हो, महाराज श्री के अंदर जो धारणा थी उनने स्पष्ट कर दी अपनी, उनको कोई कषाय थोड़ी है आपके प्रति, महाराज श्री तो बिल्कुल शांत प्रकृति के हैं, उनने जो कुछ भी कहा कह दिया, वो नाराजी को कायम नहीं रखने वाले, उनने कुछ समझ करके कह दिया, इतना अफसोस क्यों करते हो। तो दिवाकर जी ने कहा कि हमने तो इतनी महाराज श्री की भक्ति की है और हमारी भावना इतनी ऐसी है वैसी है। तो उनने कहा कि देखो तुम महाराज श्री को अपना मत समझना, जो अपने बाप के नहीं हुए वो आपके कहां से हो सकते हैं। फिर शांति सागर महाराज जब वहां बैठ गए तो तत्काल वहां के जो मुख्य अधिकारी थे उस जमाने के, उनको फोन लगाया गया कि यहां ट्रैफिक जाम हो चुका है, सैकड़ों गाड़ियां रुकी हुई है, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ लोग दूर से देख रहे हैं और कुछ लोग नतमस्तक हो रहे हैं, क्या किया जाए। तो फिर वहां से कमिश्नर ने या कलेक्टर ने यह आदेश दिया कि साधु को मत रोको, और फिर वहां उन्होंने कानून में संशोधन किया कि नंगा व्यक्ति खुली सड़क पर नहीं घूम सकता लेकिन नग्न साधु को कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो आचार्य शांति सागर महाराज का बड़ा उपकार है कि उनने सब जगह रास्ते खोल दिए, वरना दिल्ली जैसे शहर में जहां उनके लिए रास्ता बंद हो गया था, ये तो उनका साहस था। फिर किसी ने कहा कि उस चौराहे पर इतनी गाड़ियों की आवाजों में और फिर हो हल्ले में आप बैठे बैठे क्या कर रहे थे महाराज। बोले वो उस तरफ अपना क्या, अपन अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। माने अभ्यास हो जाने के बाद में चौराहा भी ध्यान में बाधक नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति आ जाती है फिर वहां पर कोई विघ्न नहीं हो पाता उनके लिए। पर वहां तक पहुंचना सहज नहीं है, वो तो सहज लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं, जिनका जीवन ही असहज है, जो कृत्रिमताओं से घिरे हुए हैं, खाना भी सहज नहीं। आचार्य श्री तो कहते हैं कि तुम लोग लौकी की सब्जी खाते हो, पर हम नहीं समझते कि तुम्हें कभी लौकी का स्वाद आता है, सब मसालों का स्वाद। इतने मसाले डाल डाल करके लोग खाते हैं, नमक डाल दिया तो भी लगा कि ये तो अभी दिखने में उतना आकर्षण नहीं आ रहा है, तो फिर और दूसरी चीजें डाल दी। फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि अंत में कि उसको देखकर महाराज लोग तो घबरा जाए, इतनी कृत्रिम। और इसी प्रकार वेशभूषा देखो कितनी कृत्रिम है, और श्रृंगार के जो ढंग है वो भी कितने कृत्रिम है। बाल बनाने की स्टाइल भी लोगों की अपनी नहीं है, वो तो कोई आदर्श उनकी दृष्टि में है तो उसका अनुकरण चल रहा है। माने सारा काम जहां नकली है, वहां यदि कोई चाहे कि भाई हमें असली चीज प्राप्त हो जाए, तो ये तो सिर्फ कल्पना मात्र है, और ये भी एक बनावटी बात है, ये भी वास्तविकता नहीं है। तो उस बालक ने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, जो आपने देखा सो मैंने भी देख लिया, आपने संसार को असार देखा और इस राज को भी आपने भयंकर समझा, इसलिए आप छोड़ने को तत्पर हुए, मैं इसको कैसे अंगीकार कर सकता हूं, मैं भी संन्यास अंगीकार करूंगा, मैं भी मुक्ति का पुरुषार्थ करूंगा। पिता ने उसको समझाया कि अभी बहुत छोटे बालक हो तुम, पैदल नंगे पांव चलना, निर्वस्त्र विचरण करना सर्दी गर्मी की बाधाएं, बरसात के समय मच्छर आदि के उपद्रव, और भी दूसरे कई प्रकार के उपसर्ग परेशान। अभी थोड़े बड़े हो जाओ, मैं मना नहीं करता, मार्ग तो यही श्रेष्ठ है, त्याग ही भारत की संस्कृति है, समझाते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा कहता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, इसका क्या ठिकाना, क्या सभी बच्चे बड़े होते हैं? मृत्यु का एक नाम है समवर्ती, समवर्ती जिसका अर्थ होता है जो सबके प्रति समान बर्ताव करे, चाहे अरबपति हो या जिसके पास आज के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है ऐसा रंक, चाहे स्वस्थ हो या थर्ड स्टेज कैंसर का मरीज, चाहे गामा जैसा सशक्त पहलवान हो या आइसोलेशन वार्ड में पड़ा हुआ टीबी का एक दुर्बल मरीज, चाहे 20 डिग्रियों को हासिल करने वाला हो, पढ़ा लिखा विद्वान हो या अंगूठा छाप, कोई भी हो, मृत्यु समान रूप से सबको समेट कर ले जाती है। अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो,
काल बलि ले जावे, हाथी पर जाने वाला भी अर्थी पर आ जावे, अर्थी पर आ जावे। राजा समझ गए कि पुत्र दीक्षा योग्य हो चुका है। दोनों जाकर दीक्षा लेते हैं और पुत्र की तपस्या में एक विशेष तेज था, प्रभावना बढ़ने लगी। और एक नीति है, सत्यम भानु प्रभावश्च हुका नाम नो सुखायते। सूर्य का जो तेज है वो सारी दुनिया को तो आनंदित करता है, लेकिन उल्लुओं को सूर्य का तेज प्रसन्न नहीं करता। सूर्योदय के समय पक्षी तो चहचहा उठते हैं, कमल खिल जाते हैं, मनुष्य भी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन उल्लू रूठ जाता है। इसी प्रकार वृषभसेन मुनिराज की उस कठिन तपस्या से एक ईर्ष्यालु मनुष्य नाराज हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसे में तो हम लोगों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, इन लोगों का प्रभाव बढ़ जाएगा। ये जो रेखाएं हैं, सीमा रेखाएं, हम तुम अपन और वो, ये सारी रेखाएं केवल एक अलगाव को प्रकट करने वाली रेखा है। जहां धर्म होता है वहां एकता स्थापित होती है, वहां मैं तू का भेद समाप्त हो जाता है और एक सच्चा प्रेम, एक पवित्र प्रेम प्रस्फुटित होता है। और जब तक वह वात्सल्य भाव अंदर से प्रकट नहीं हुआ, तब तक ये निश्चित समझना कि कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि जहां धर्म आएगा वहां वात्सल्य साथ में आए बिना रह नहीं सकता। वो देखता रहता है कि ये दिन भर क्या करता है। छोटा सा बच्चा है, कल का बच्चा। लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि अरे कल का, लेकिन ये नहीं सोचते कि अनादिकाल से तुम भी संसार में और वो भी संसार में, कोई छोटा बड़ा नहीं। भले आज इस पर्याय की दृष्टि से आप कह लो छोटा, कल का बच्चा, लेकिन ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। वह बालक 3.9 करोड़ मुनिराजों में परिगणित था, वृषभसेन मुनिराज। समव शरण में अवस्थित गणधर देव भी जब नमो लोए सबु सावणम बोलते थे, तो जिसको आप बालक समझते हो उसको भी वो नमस्कार करते थे। जो संसार के आचार्य शिरोमणि होते हैं वो भी उनको नमस्कार करते थे, क्योंकि गुणों की पूजा है। जिसने उस रत्नत्रय को धारण किया, उम्र भले छोटी हो लेकिन फिर भी सारा जगत उनके चरणों में है। उसने देखा कि ये दिन भर क्या करता है। पता चला कि ग्रीष्म काल चल रहा है और आतापन योग, गर्मियों में दिन भर चट्टान पर खड़े होकर तपस्या करना, सूर्य की ओर मुख करके। देखता रहा कुछ दिनों तक और एक दिन उसने वो चट्टान तपा दी, बहुत गर्म तपा दी, पानी के छींटे डाले तो उड़ जाए। और फिर वहां तपाने के बाद देखता है छुपकर, अब क्या होता है देखें। महाराज नगर में आहार चर्या करने के बाद जब वहां आतापन योग के लिए आए, उनको लगा कि आज कुछ उपसर्ग मालूम पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरा संकल्प है आतापन योग धारण करने का, प्राण जाए चिंता नहीं, लेकिन मैं विचलित नहीं हूंगा। छोटे से थे, हमने जैसे ही उस पर पैर रखा तो पैर के नीचे की खाल जल करके नष्ट हो गई, तो भी वो खड़े हो गए ध्यान में, पैर जलना प्रारंभ हो जाते हैं, दोनों पैर जल जाते, इतने कोमल पैर, 8 वर्ष की उम्र में कितनी कठोरता आ सकती है पैरों में। वो देखता रहता है झाड़ियों में से छुपकर, लेकिन इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। कैसा अद्भुत पराक्रम था ये योग का। क्या उस बालक ने बहुत अभ्यास किया था पहले? कुछ भी नहीं, उसने तो कुछ देखा ही नहीं था, और फिर भी इतनी सहन शक्ति कहां से आ गई? ये है योग का पराक्रम। वास्तव में वे ही सच्चे योगी हैं जिन्होंने त्याग की उस पराकाष्ठा का स्पर्श किया है, बाकी तो सब अभ्यासी हैं या उस तरफ बढ़ने में संलग्न है। और ऐसा ध्यान लगाया उन्होंने उस समय कि अंतर मुहूर्त में थोड़ी देर थी, इतना भयानक उपसर्ग आ गया था कि जीवन बिल्कुल समाप्ति की ओर था। उन्होंने वहीं पर खातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। 8 वर्ष की उम्र है, केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब चूंकि उस उपसर्ग में आयु भी कदली घात के माध्यम से नष्ट हुई, तो थोड़ी सी आयु बस बच गई। उतने समय में उन्होंने सब कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। वे वृषभसेन मुनिराज, अपन आज भी नमो सिद्धांत बोलते हैं तो नमस्कार वहां तक जाता है, भले आप ध्यान न देते हो, लेकिन वे सिद्ध परमेष्ठी हैं आज। बोलिए वृषभसेन भगवान की जय। उनके चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। उन्होंने तो संसार की असारता को समझकर मोक्ष पुरुषार्थ को पूर्णता प्राप्त करा दी, लेकिन अब अपने को विचार करना है। ये सब सुनने के बाद और सब कुछ देखने समझने के बाद भी अपना क्या विचार है? यम नियम